समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी, यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछली कई सदियों से सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व देश की सभ्यता की अदम्य भावना को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स बेल टू उमर खलीद एंड सरजिल इमाम इन द 2020 दिल्ली रायट्स केस, 5 अदर अक्यूज्ड गेट बेल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तट रक्षक बल के पहले स्वदेशी अनिर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया।
यूएन सेक्रेटरी काउंसिल टू होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टू डिस्कस यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इन वेनेजुएला। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Somnath Temple Heritage and the National Bird Day. Well, to start off with the first topic, that is Somnath Temple Heritage, Karishma. Today we talk about the time 1,000 years since the first attack of the legendary Somnath Temple, located in Prabhas Patan, Gujarat. And this magnificent temple is not just a stone structure. It is a symbol of India's enduring spirit, a testament to the courage, faith and culture that have withstood the trials of time. Imagine the year 1026 AD. The invaders, led by Mahmud of Ghazni, laid siege to Somnath in a violent attempt to destroy one of the most revered symbols of Indian faith and civilization. But despite repeated assaults over the centuries, Somnath has risen again and again, its glory undiminished.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस अविश्वसनीय यात्रा पर विचार करते हुए सोमनाथ को भारत की आत्मा बताया, एक ऐसा स्थान जो सभी भारतीयों के दिलों में गर्व का संचार करता रहा है। और वास्तव में सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह हमारी मजबूत संस्कृति की भी कहानी है।
सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। यह विश्वास का वह स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं।
2026 इस पवित्र स्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। 1000 वर्ष पूर्व गजनी के महमूद ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया था, जो मात्र एक इमारत नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और दृढ़ता का प्रतीक था। फिर भी सदियों से बार बार हुए हमलों के बावजूद सोमनाथ आज भी शान से खड़ा है, जो भारत की अटूट भावना का जीवंत प्रमाण है।
Yes, and imagine listeners, the scene in January 1026, invaders storming the temple, seeking to erase centuries of devotion and culture. But history shows us that while they destroyed structures, they could not destroy the spirit of the people. That courage, that dedication to preserving faith and civilization has been passed down through generations. Somnath rose again and again, becoming a beacon of hope and resilience for the entire nation. Somnath's story is not just one of battles. It is a story of enduring culture. From the intricate carvings, I beg your pardon, on its walls, to the chants echoing in its sanctum, The temple embodies India's artistic, spiritual and philosophical legacy. It tells us that culture cannot be destroyed by swords or invasions. It lives in the hearts and minds of the people.
और श्रोताओं, वही भावना आज भी भारत में जीवित है. जिस प्रकार सोमनाथ ने सदियों के आक्रमणों का सामना किया, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र ने भी आक्रमणों, औपनिवेशिक शासन और अनगिनत चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए नवाचार, कला और संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है. आज भारत अपने त्योहारों, संगीत, नृत्य, साहित्य और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है. हमारा योग और आयुर्वेद न केवल स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि विश्व भर के लोगों को संतुलित और सचेत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं.
Yes, and now let us take a moment to celebrate some of these cultural treasures. Imagine the vibrant colors of Diwali with lamps illuminating homes, the joyous dance of the Garba during Navratri, the exuberance of the holy painting streets in every shade imaginable, and each festival is a living story of India's rich heritage. And each is an echo of the same spirit that rebuilds Somnath again and again.
बिल्कुल. और इसी के साथ अभिषेक, अगर देखा जाए तो कला के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पे अपनी छाप छोड़ रहा है. भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं. हमारा संगीत हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की भावपूर्ण रागों से लेकर आधुनिक फ्यूजन तक पूरी दुनिया को मोहित कर रहा है. और हमारे साहित्य और कविता को भी नहीं भूलना चाहिए, जो दुनिया के कोने कोने के पाठकों को प्रेरित करते रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी हमें याद दिलाते हैं कि जिस भावना ने सोमनाथ को संरक्षित किया, वही भावना आज भारत को आगे बढ़ा रही है. हमारे युवा, हमारी वैश्विक उद्यमशीलता और दुनिया की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने की हमारी प्रतिबद्धता, चाहे वह अंतरिक्ष अन्वेषण हो, प्रौद्योगिकी हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो या वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.
But Karishma, let us return to Somnath. Imagine as you stand before the temple today, the waves of the Arabian Sea crashing nearby, you can feel the millennia of devotion and resilience. You can see the centuries of art, the stories of countless devotees who preserve the faith and the architectural brilliance that tells tales of a civilization that refused to break. And this is not just history, it is a lesson for every Indian today. The temple teaches us that when a civilization or a nation is rooted in its culture, it can overcome even the greatest challenges. Just as Somnath rose from repeated destruction, India too continues to reclaim its greatness, pride and global respect.
बिल्कुल. और इससे पहले हमने 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर, आइए याद रखें कि सोमनाथ महज एक स्मारक नहीं है, यह भारत की दृढ़ता, साहस और अटूट संस्कृति भावना का प्रतीक है. हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत, हमारा संगीत, कला, त्योहार, योग और आयुर्वेद दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है और अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला एक सेतु भी है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए आइए भारत की अमर आत्मा का भी जश्न मनाएं. एक ऐसी सभ्यता जिसने कई चुनौतियों का सामना किया, फिर भी संस्कृति, आस्था और नवाचार के प्रतीक के रूप में चमकती रहती है.
Yes, and Somnath is not just Gujarat's pride, it is India's pride, a reflection of the spirit that makes this nation truly timeless. When we speak of Indian culture, it's not just monuments and temples, it is art, music, festivals, yoga, Ayurveda, and the countless traditions that connects us to our roots. Just as Somnath survived centuries of invasions, India's culture has endured, evolved, and now thrives across the globe.
और आज भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा रहा है. न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो के पार्कों में योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं. आयुर्वेद और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियां विश्व भर में लोगों के स्वस्थ जीवन को आकार दे रही हैं. दिवाली और होली जैसे त्यौहार अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, वे महाद्वीपों की सड़कों को रोशन करते हैं और हमारी विरासत की खुशियां और जीवंत रंग भी बिखेरते हैं.
Karishma, and the Prime Minister said it beautifully. If Somnath, a temple attacked 1,000 years ago, could rise again and again, then so too can a nation restore itself to the greatness it embodied before invasions. And look around today, India is indeed rising from innovation and technology to global cultural influence, India is a bright spot of hope, optimism and creativity on the world stage. So, dear listeners, every time you hear the name Somnath, think of resilience, think of art, music, faith and the undying spirit of our ancestors who preserved this incredible heritage for us. Let it remind us that culture is not just our past, it is a bridge to the future.
बिल्कुल. और श्रोताओं, आइए सोमनाथ की कहानी को अपने दिलों में सजोकर रखें, न केवल इसके इतिहास का बल्कि इसकी जीवंत संस्कृति का भी जश्न मनाएं. मेरी कामना है कि आपका दिन गर्व, प्रेरणा और हमारी अद्भुत भारतीय विरासत के गहरे जुड़ाव से भरा हो. भारत को भारत बनाने वाली और भी कई कहानियों के लिए जुड़े रहें.
Yes, absolutely. And now we move on to our second topic in our Dateline section, that is the National Bird Day. And today, Karishma, January 5th is a very special day for nature lovers, bird watchers and anyone who enjoys the beauty of the skies. Why? Because it's National Bird Day. Originating in the United States, National Bird Day is celebrated every year to honor the amazing role birds play in our ecosystems and to raise awareness about the challenges they face. Birds are not just beautiful creatures singing outside your window. They are vital to the health of our planet. From spreading seeds to pollinating plants and controlling insects, birds are like little heroes keeping our ecosystems in balance.
लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से समय बदल रहा है, इतने महत्व के बावजूद विश्वभर में पक्षी गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं. पर्यावास का क्षय, जलवायु परिवर्तन और घटते खाद्य स्रोत कई प्रजातियों के लिए जीवन को और भी कठिन बना रहे हैं. समृद्ध जैव विविधता वाला भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत में भी पक्षियों के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावासों में से एक हमारे आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं. ये आर्द्र भूमि क्षेत्र झीलें, नदियां, दलदल और सारस, मैग्रोव सारस क्रेन से लेकर प्रवासी बत्तखों और राजहंसों तक असंख्य पक्षी प्रजातियों का घर बन जाते हैं. ये न केवल पक्षियों बल्कि अनगिनत अन्य जीवों को भी भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं.
Absolutely. And recognizing this, India's Union Minister for Environment, Forest and Climate Change has emphasized the urgent need to protect wetlands to preserve bird populations and maintain ecological balance. Wetlands are not just bird homes, they are life support systems for humans too. They clean water, store flood waters and help fight climate change. When we say wetlands, we are protecting both birds and the people.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 1300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं. इनमें स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षी शामिल हैं. हर साल प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, लेकिन अक्सर खराब मौसम का सामना भी करना पड़ता है और भारतीय आर्द्र भूमि और जंगलों तक वो पहुंचते हैं. इसके साथ ही चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और वेम्बनाड झील जैसी जगहें इन शानदार यात्रियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध हैं. इन पक्षियों को देखना न केवल मनमोहक है बल्कि यह हमारे ग्रह की परस्पर सभ्यता की भी याद दिलाते हैं.
Yes, sir, Karishma, but birds can't survive without a help. Even small actions make a difference, and avoid littering near water bodies, plant native trees in your garden and support local bird sanctuaries. If you have a balcony or a garden, try setting up a simple bird feeder. You'd be amazed at how many visitors you'll get. And don't forget, every photo, observation and record helps scientists understand and protect bird populations. So today, on National Bird Day, let's celebrate birds in all their glory and also take a pledge to protect their homes, their food sources and the ecosystems they depend on.
बिल्कुल. और इसी के साथ श्रोताओं, याद रखिए कि पक्षी सुबह के गीत से कहीं बढ़कर हैं. वे एक स्वस्थ ग्रह के प्रतीक हैं. आज बाहर निकलिए, ध्यान से सुनिए और अपने आसपास दिखने या सुनाई देने वाले तीन पक्षियों को पहचानने की कोशिश कीजिए. ये मैना, कौआ या फिर कोई बत्तख जैसे शीतकालीन आगंतुक पक्षी भी हो सकते हैं. अगर संभव हो तो एक तस्वीर खींचिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए और इस बात पर गर्व महसूस कीजिए कि आप प्रकृति की देखभाल करने में इस समुदाय का हिस्सा हैं.
Yes, absolutely, Karishma. So to conclude and wind up our discussion, celebrate the skies, protect our wetlands, and remember, every bird counts, every habitat matters, and every action helps.
और श्रोताओं अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
यस, द स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो अचीव्ड अ रिकॉर्ड ऑर्गन डोनेशन लास्ट ईयर। इट स्टैंड्स थर्ड आफ्टर तमिलनाडु एंड तेलंगाना इन द कंट्री वेयर द डोनर्स हैव डोनेटेड किडनीज, लिवर, कॉर्नियास एंड अदर ऑर्गन्स, थेरबाय सेविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट।
The State Organ and Tissue Transplant Organization, SOTTO, has achieved a record 198 donations from organ donors in 2025, that is last year. This is the highest number of donations in a year in the state. It has surpassed the previous peak of 178 donations in 2023. The steady rise in donations over the past 5 years reflects expanded hospital participation, growing awareness, and improved systems. Even Tier 2 cities now have non-retrieval organ transplant centers. In 2024, Karnataka recorded 168 donations of organs. SOTTO received organ donations from 150 male and 48 female donors in the last year. Kidneys were the most donated organs, followed by cornea, liver and heart valves. Apart from these, hearts, lungs, skin, bone and small bowel were the other organs and tissues retrieved from the donors. Most of the donations were recorded in Bengaluru and Mysuru. There is rising demand for organ transplants in the state. As per records, with SOTTO, around 5,500 patients in Karnataka await organ transplants, with most needing kidneys and livers. SOTTO has tied up with the police department to receive communication about accident cases in which organ donation could be possible. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है। हिमाचली उत्पादों को हिम ब्रांड के तहत नई पहचान देने और प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस 3 दिवसीय फेस्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में किया। हिम ब्रांड के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हिमाचली उत्पादों को देशभर में विशिष्ट पहचान दिलाना है, ताकि ये राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बना सके। इस फेस्ट में ग्रीन मोबिलिटी, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का उद्घाटन 3 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। ये फेस्ट स्थानीय उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के लिए अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बाजार से जुड़ने का सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। ये पहल हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने, क्षमता निर्माण, वित्तीय सहयोग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम है। इस फेस्ट में हस्तनिर्मित 4,000 हिमाचली शॉलों का प्रदर्शन किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। यहां स्थानीय उत्पादों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को अपनी कला और उत्पाद प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। फेस्ट के दौरान बॉलीवुड और स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्रदेश सरकार हिमाचली उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हिम ब्रांड को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि मेड इन हिमाचल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विशेष सत्र आयोजित किए गए। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग और बिक्री को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है, और हिम एमएसएमई फेस्ट इसी संकल्प को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को सुदृढ़ करने के लिए 1642 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, जिनमें से 109 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में 107 स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं, जबकि 407 स्टार्टअप स्थापना की प्रक्रिया में है। गत 2 दिनों में इस फेस्ट में अनेकों रोचक गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जिस प्रकार की उत्साहवर्धक रुचि हिमाचली उत्पादों में लोगों द्वारा दिखाई जा रही है, वो निश्चित रूप से प्रदेश में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
In Jammu and Kashmir, the paddy procurement in the Jammu region has achieved a record high amid the ongoing Kharif marketing season 2025-26, reflecting the effectiveness of the minimum support price MSP mechanism and the sustained efforts of the Agriculture Department. Until date, a total of 4.47 lakh quintals of paddy has been procured, which is the highest ever recorded so far. The performance during the ongoing season clearly indicates a strong upward trend in both procurement volume and farmer participation, We have more from a correspondent.
The current paddy procurement has surpassed the earlier highest level recorded during Kharif marketing season 2021-22, when 4.05 lakh quintals of paddy were procured and an amount of Rs. 79.03 crore was paid to farmers as MSP. The performance during the ongoing season clearly indicates a strong upward trend in both procurement volume and farmer participation. In comparison, during Kharif marketing season 2024-25, a total of 3.27 lakh quintal of paddy was procured, benefiting 4,897 farmers, with MSP disbursement amounting to Rs. 75.67 crore. During the ongoing Kharif marketing season 2025-26, paddy procurement has registered a significant increase, reaching a record level of 4.47 lakh quintal till date, benefiting 6,130 farmers, with MSP amounting to Rs. 106.48 crore paid directly to the farmers through direct benefit transfer DBT. This reflects a substantial improvement both in procurement volume and farmer outreach during the current season. For the ongoing KMS 2025-26, 24 mandis are operational across the region, ensuring smooth and accessible procurement for paddy growers. The procurement has already crossed the set target of 3.50 lakh quintals, highlighting the success of coordinated efforts by all concerned agencies. Gulshan Rana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
और अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, in under 19 cricket, host South Africa have set a target of 246 runs for India in the second youth ODI of the three-match series at the Willie Moore Park in Benoni. South Africa were all out for 245 runs in 49.3 overs. Earlier, the host won the toss and elected to bat first. And moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended on a bearish note after a range-bound trade today. The Sensex fell 322 points, or 0.38%, to close at 85,440, while the Nifty dipped 78 points, or 0.3%, to settle at 26,250. In the forex market, the rupee today depreciated by 9 paise to trade at 90 rupees and 28 paise against the US dollar a short while ago.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember revolutionary and freedom fighter Barindra Kumar Ghosh, popularly known as Barin Ghosh, who was born on the 5th of January 1880. The younger brother of Sri Aurobindo Ghosh, he was highly influenced by his brother and joined the revolutionary movement and was actively associated with prominent freedom fighter Jatindranath Banerjee.
In 1906, Barindra Kumar published the Bengali weekly Jugantar. Later, the secret revolutionary group Jugantar was formed under the guise of a fitness club in Bengal. He, along with Baga Jatin, was instrumental in recruiting young revolutionaries.
In the intensive police investigation following the murder attempt of Magistrate Douglas Kingsford in 1908, Barindra and Aurobindo were arrested on the 2nd of May 1908, along with other freedom fighters. In the Alipur bomb case, Barindra Ghosh and Ulaskar Datta were sentenced to death. However, with the intervention of Deshbandhu Chittaranjan Das, the sentence was reduced to life imprisonment.
In 1909, Barindra Kumar was deported to the cellular jail, Andaman. Barun was released during a general amnesty in 1920 and returned to Kolkata to start a career in journalism. He published his memoirs, The Tale of My Exile, 12 Years in Andamans.
Nine.
Okay. Yes, and moving on, we're also remembering Ramchandra Nahar Chitalkar, who passed away on this day in 1982, also known as C. Ramachandran. Yes, Karishma?
और आज पुण्यतिथि है हिंदी के महान संगीतकार सी रामचंद्रन की. सी रामचंद्रन का पूरा नाम चितलक रामचंद्र कृष्णा था और उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे संगीत दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये संगीत.
आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्र.
Yes, and see, Ramchandra often sang and acted in Marathi movies under the name R.N. Chitalkar. And for his career as an occasional playback singer, he used only his surname, Chitalkar. And also moving on, Karishma, Bradley Charles Cooper was born on this day in 1975. He's an American actor and filmmaker. He's the recipient of various accolades, including a British Academy Film Award and 3 Grammy Awards. In addition, he has been nominated for 12 Academy Awards, 6 Golden Globe Awards and a Tony Award. Cooper appeared on the Forbes Celebrity 100 list 3 times. His films have grossed $13 billion worldwide, and he has been placed in annual rankings of the world's highest paid actors 4 times. Cooper had his breakthrough in The Hangover in 2009, a critically and commercially successful comedy that spawned sequels in 2011 and 2013.
और इसके साथ ही आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा के मशहूर चरित्र अभिनेता मोहम्मद उमर मुकरी का, जिन्हें लोग प्यार से मुकरी के नाम से भी जानते हैं. मुकरी ने अपने अलग अंदाज और बेहतरीन अभिनय से फिल्मों में छोटी भूमिकाओं को भी खास बना दिया. उन्होंने हिंदी सिनेमा में ज्यादातर हास्य और सहायक किरदार निभाए, लेकिन हर रोल में अपनी गहरी छाप छोड़ी.
नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ.
नथुलाल जी, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना.
ये तो आपका बड़प्पन है.
मेरा बड़प्पन है.
आ गया, आ गया, मेरा शेर, मेरा चैंपियन, मेरा मोहम्मद अली.
हाँ बोल, किसका थोबड़ा फोड़ने का है?
आज का फाइट इतना इजी नहीं है. बाहर गाँव से बहुत बड़ा बॉक्सर आएगा है, वो देख.
अपन अपना बोरिया बिस्तर बेच के पूरा 5,000 रुपया लाया है. तू बोल तो लगाता हूँ.
जो लगाना है लगा दे, देखा जाए.
अरे क्या बोल रहा है, अगर तू हार गया तो मैं लग जाऊंगा, पर पूरे 5,000 रुपये लगा रहा हूँ.
Yes, and Deepika Prakash Padukone was born on this day in 1986. She is an actress who works predominantly in Hindi films. Her accolades include 3 Filmfare Awards. Time named her one of the 100 most influential people in the world in 2018 and awarded her Time 100 Impact Award in 2022. Padukone, the daughter of badminton player Prakash Padukone, was born in Copenhagen and raised in Bangalore. As a teenager, she played badminton in the national level championships, but left her career in the sport to become a fashion model. And Padukone received offers for film roles and made an acting debut in the 2006 as a title character in the Kannada film Aishwarya. And Padukone then played a dual role opposite Shah Rukh Khan in her first Bollywood release, The Romance, Om Shanti Om, in 2007, which won her the Filmfare Award for Best Female Debut.
बिल्कुल. और इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस, पीकू, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी कई फिल्मों में अच्छे किरदार निभाए. और अभिनय के साथ साथ दीपिका मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी खुलकर बात करती रही हैं. साल 2020 में उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया.
Yes, and Mansoor Ali Khan or M.A.K. Patodi, nicknamed Tiger Patodi, was born on this day in 1941. He was an Indian cricketer and former captain of the Indian cricket team. Patodi was appointed India's cricket captain at the age of 21 and described as one of his greatest. Patodi was also called the best fielder in the world of his time by commentator John Arlott and former England captain and contemporary Ted Dexter.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारत की मशहूर निशानेबाज अंजुम मुदगिल का. अंजुम ने बहुत कम उम्र में शूटिंग शुरू की थी और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई. और इसके साथ ही उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने देश और विदेश में कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और भारत के लिए पदक जीते. 2019 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
And before we wrap up, we also would like to tell our listeners that Hayao Miyazaki, Japanese animator, filmmaker and manga artist, also celebrates his birthday today. So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. So from Karishma and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
Namaskar. Namaskar.